ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा के पहले चरण में आज दोपहर बाद ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान पहुंचे। क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादे बिल्लाह ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी का ब्रुनेई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर औपचारिक स्वागत किया गया। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री के ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। ये यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40वीं वर्षगांठ के सिलसिले में हो रही है। अपनी यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वे आज उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी जाएंगे। इस यात्रा पर रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्रुनेई और सिंगापुर की उनकी यात्रा से दोनों देशों और आसियान क्षेत्र के साथ भारत की साझेदारी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत विजन में दोनों देश महत्वपूर्ण साझेदार हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे सुल्तान हाजी हसनल बुल्कैया और शाही परिवार के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ बैठक के लिए उत्सुक हैं। श्री मोदी ने कहा कि ब्रुनेई से वे कल सिंगापुर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, वरिष्ठ मंत्री ली सेन लूंग और एमिरेट्स वरिष्ठ मंत्री घो चोक टोंग से भी मिलने के लिए उत्सुक हैं। श्री मोदी सिंगापुर के व्यापारी समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सिंगापुर के साथ रणनीतिक भागीदारी, विशेष रूप से विनिर्माण, डिजिटलीकरण और स्थायी विकास जैसे नए और उभरते हुए क्षेत्रों के बारे में गहन विचार विमर्श करना चाहते हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा से पहले एक साक्षात्कार में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पिछले दो दशकों में बहुत अधिक सशक्त रहे हैं। इस बीच सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त डॉ शिल्पक अम्बुले ने कहा कि भारत और सिंगापुर नए और उभरते क्षेत्रों को और बढ़ावा देने के लिए संबंधों को और सशक्त बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आसियान देशों में सिंगापुर भारत के लिए संपर्क का मुख्य स्तंभ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि वे देश के विकास का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने ये बात आज पुणे में सिम्बियोसिस विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर कही। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वर्ण पदक विजेताओं में 11 में से 8 महिलाएं होना विश्वविद्यालय के इन्हीं प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों का लक्ष्य मूल्यों पर आधारित शिक्षा, संस्कृति तथा समाज की जरूरतें समझने में विद्यार्थियों की मदद करना होना चाहिए। राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि ऐसे स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद विकसित किए जाने चाहिए जो संपूर्ण समाज, विशेष रूप से उपेक्षित लोगों के लिए उपयोगी हों। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल भी इस अवसर पर मौजूद थे। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर पहले के पूर्वानुमान को 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि, निजी उपभोग और निवेश जैसे मुख्य कारकों के कारण मध्यम अवधि में मजबूत बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भी आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए विकास पूर्वानुमान को 20 आधार अंकों से बढ़ाकर 7% कर दिया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार तिमाही आकलन में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 6.7% आंकी गई। पेरिस पैरालंपिक खेलों के छठे दिन आज निशानेबाजी में अवनी लेखरा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 श्रेणी के फाइनल में पहुंच गई हैं। तीरंदाजी में पूजा ने महिलाओं की रिकर्व प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। शॉटपुट में भाग्यश्री जाधव अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। पदक तालिका में भारत 3 स्वर्ण सहित 15 पदक लेकर 15वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।